सत्संग जी, प्रेमा ने बोला आज महाराष्ट्र के 57वें वार्षिक समागम का ये दूसरा दिन, और जब से सदगुरु माता जी ने पिछले वर्ष ये इशारा दिया कि अगला महाराष्ट्र का समागम नागपुर की धरती पर होगा, तब से ही जिस प्रकार से उत्साह यहाँ के संतों का हमेशा ही एक मिसाल दी जाती है महाराष्ट्र के संतों की, कि किस तरह जज्बा है सेवा का, भक्ति का, प्रेम का, तो बखूबी यहाँ भी नागपुर में वैसा ही जज्बा, वैसा ही उत्साह, वैसा ही हर्ष, एक वैसा ही उत्सव हम सब अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं। और बहुत ही सौभाग्य है कि इसका भाग बनने का अवसर हम सबको मिला। संतों ने अपनी वाणी से, चाहे गा के चाहे कह के, सुकून अंतर मन का, द पीस विद इन, स्थिरता, परमात्मा, निरंकार, इन सब के ऊपर अनेकों भाव सांझे किए। और हर भाव जो साझा किया जा रहा है या किया जाता है इस मंच से, किसी के भी द्वारा, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, बाल संत, किसी के भी द्वारा कोई भी भाव अगर यहाँ रखा जाता है, तो वो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो नियत है वो यही होती है कि ये जो राम रतन धन मेरे जीवन में आया, मैं संसार में आवाज़ दे सकूं कि आप सब भी इसी राम रतन धन को प्राप्त कर सकते हैं। यही नियत होती है कि मैं बता सकूं कि मेरे जीवन में जो करामात मेरे सदगुरु ने की है वो आप सबके जीवन में भी हो सकती है, कि मेरा सदगुरु किसी एक दो के लिए नहीं पर इस पूरे संसार के लिए आया है, मैं ये आवाज़ दे सकूं और अपने जीवन से, अपनी इस बात से, अपने अनुभव से हर एक महापुरुष खुद को एक प्रमाण की तरह, एक सबूत की तरह दर्शाते हैं कि किसी और की बात नहीं, किसी और धर्म ग्रंथ की बात नहीं, किसी और के जिए हुए की बात नहीं, अपनी आप कही, अपनी आप बीती, घट घट में इस राम के संग्रह के जो मैं जीवन जी रहा हूँ उसी की कहानी आपको बता रहा हूँ। और फिर जब वो अपनी वाणी में किसी संत का, किसी संत की वाणी का सहारा लेते हैं, किसी वेद ग्रंथ का सहारा लेते हैं, तो वो यही बता रहे हैं कि जो उसमें लिखा है बखूबी मैं भी जी के कह रहा हूँ, कि मैं मिला के देख चुका हूँ, बात बिल्कुल सटीक है, उन्होंने भी जी के कहा और आज मैं भी जी के कह पा रहा हूँ कि ये सत्य जीवन में आया है। और ये सत्य जीवन में आया है, ये परमात्मा जीवन में आया है, तो जीवन में मुझे प्रेम क्या है, सुकून क्या है, इसका कुछ बोध होना शुरू हुआ है। सद्गुरु माता जी ने कल अपने प्रवचनों में रिपब्लिक डे के अवसर पर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हुए कहा कि देश का तो संविधान आज के दिन लागू हुआ, इसको रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। पर अगर एक मानवता का संविधान भी बनाया जाए और हर एक मानव, हर एक इंसान उस मानवता के संविधान को अपने जीवन का आधार बना ले। सदगुरु माताजी मेंशन्ड इन हर डिस्कोर्स यस्टरडे दैट वी आर ऑब्जर्विंग रिपब्लिक डे टुडे, वी आर ऑब्जर्विंग द डे व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग, वाज अडॉप्टेड एंड देन माताजी सेड दैट मे वी ऑल एज ह्यूमंस मे वी ऑल ऑल्सो अडॉप्ट a constitution of humanity in our lives, which is based on all human values. And may every human make, may all of us make that constitution the foundation of our lives. A constitution of humanity which talks about love, peace, brotherhood, oneness, a world without walls. And may all those values become the foundation of our lives. And then the world that we see today will definitely be a better place than what it is now. At least my world, the world as I know it. All of us, while we are living in this world, we also have formed our own little worlds, which consist of my own family, my colleagues, my friends. And if I start practicing this constitution of humanity, which is based on these values, at least my own world will be a much better place for me and for everyone who resides in it with me. तो इन्हीं भावों का जिक्र किया गया कि ये जो मानवीय गुण हैं, ये संविधान इस प्रकार अगर हर एक इंसान अपने जीवन में लागू कर ले, अपने जीवन में उसको आधार बना ले कि ये जीवन जिया जाएगा, तो इन गुणों के आधार पर प्रेम के, विनम्रता के, भाईचारे के, दीवार रहित संसार बनाने के लिए जो भी प्रयत्न करना है एक इंसान को, वो सारे प्रयत्न करेगा तो ये जीवन, ये दुनिया, ये संसार वाकई में एक सुनहरा रूप लेता चला जाएगा। कितने महापुरुषों ने ये बात को इन पिछले दो दिनों में और अक्सर कई समागमों पर दोहराते हैं कि ये समागम सदगुरु इसलिए ये नज़ारा रचाते हैं कि देखा जा सके कि ये भी एक जीने का तरीका है, जहाँ ये मानवता का संविधान, सच्चाई के आधार पर बनाया गया संविधान, एक एक जीवन के लिए मार्गदर्शन का, प्रेरणा का स्रोत बन रहा है। नागपुर में आए तो बात की गई कि इसको सिटी ऑफ ऑरेंजेस कहा जाता है, संतरों का शहर। तो दास ने अभी यहाँ पहुँचने के बाद संतरा खाया तो नहीं, पर अभी हाल ही में सिक्किम में दास संतरा खा रहा था। तो जब यहाँ पहुँचे सिटी ऑफ ऑरेंजेस, सुना तो भाव यही गया कि संतरे को जब हम देखते हैं तो जो उसका छिलका है हम उसको हटाते हैं, फिर एक एक करके उस संतरे की फाड़ी को खाया जाता है उसका रस, उसका हम आनंद लेते हैं, और फिर उस छिलके को फेंक दिया जाता है और कुछ नहीं रह जाता। तो भाव यही जा रहा था कि इसी प्रकार हमारा शरीर, जो ये स्थूल एक अस्तित्व हमने अपना समझा हुआ है, ये उस छिलके के समान है। जब ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आता है तो पता चलता है कि ये स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ, आई एम नॉट दिस बॉडी। और इस बात से हम राबता भी कर लेते हैं, मान भी जाते हैं कि हाँ, ये शरीर ने तो जाना है, तो वाकई ये शरीर मैं नहीं हूँ। तो ये पहला छिलका उस संतरे का उतरता है, फिर वो जितनी फाड़ियाँ हैं अंदर, वो सारे मेरे मन के जितने भ्रम हैं, अहंकार का कारण, भ्रम का कारण, दूरी का कारण, वैर का कारण, ईर्ष्या का कारण जो बनते हैं, फिर सद्गुरु अपनी कृपा से एक एक करके उनको भी हटाता चला जाता है। और फिर जब सब कुछ हट जाता है, जब सारे संतरों की फाड़ियाँ खाली जाती हैं, तो जो बचता है वही सुकून है, और वही इन्होंने हमें हमारे जीवन में दिया है। बात करी जाती है कि सुकून, परमात्मा, सत्य, तो ये सत्य है क्या? What is truth? तो सद्गुरु माता जी अक्सर अपने प्रवचनों में फरमाते हैं कि जो बदल सकता है वो सत्य नहीं। Something which can change cannot be called the truth. And when we look around us, when we see the world around us, there is nothing that we know which cannot change. इस दुनिया में जितनी चीज़ें हम देखते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, उसमें से एक भी ऐसी चीज़, एक भी ऐसी वस्तु, एक भी ऐसी जगह हम उंगली नहीं रख सकते जो कह दें कि ये है जो बदल नहीं सकता। सुबह सूर्य उदय, शाम को सूर्य अस्त, किसी प्रांत में गए इस वक्त तो वहाँ मौसम गर्मी का, किसी प्रांत में गए तो वहाँ बर्फ़ पड़ रही है, और जिस प्रांत में सर्दी है वहाँ कल गर्मी हो जाएगी, तो किसी भी बात की गारंटी नहीं। आज हम यहाँ हैं इस शरीर में, इस शरीर ने नहीं रहना, तो कुछ भी ऐसा अटल सत्य जो हर एक चीज़, हर एक मौसम, हर एक वक्त, हर एक दिन स्थिर, एक जैसा रह सके, हम किसी भी चीज़ को नहीं कह सकते। अपने ही मन के भावों की बात करते हैं, वो मन के भाव कितनी जल्दी बदल जाते हैं। आज किसी के लिए दिल में प्रेम है, कल उसी से ईर्ष्या कर बैठते हैं। आज किसी के लिए दिल में सत्कार है, कल उसी से ही वैर कर बैठते हैं। तो मेरे मन के ये जो भावनाएं हैं, ये भी सत्य नहीं, ये भी बदल जाती हैं। आज दीन दुखियारा महसूस कर रहा हूं खुद को, तो परमात्मा के चरणों में सर झुकाने के लिए उसी पल तैयार। कल जीवन में कोई ऐसा मौका आ गया जहां महसूस करता हूं कि सब मेरे हिसाब से ही चलता है, बहुत बढ़िया चल रहा है, तो उस दिन शीश को झुकाना मुश्किल लगता है। फिर मैं बात करता हूँ और पूछता हूँ कि कहीं ये परमात्मा कुछ करता भी है या होता भी है, इसमें भी बदलाव। तो सत्य सिर्फ उसी चीज़ को कहा जा सकता है जो हर पल में स्थिर, हर पल में सत्य है। The only entity which can be called as truth is the one which never changes. And with Sadhguru's Brahm Gyan, the grace that Sadhguru bestows upon us, we realize what truth actually is. Inke Brahm Gyan ki kripa se, jis jiske jeevan mein bhi ये कृपा हुई है, ये ब्रह्म ज्ञान आया है, सदगुरु ने नश्वर और शाश्वत को अलग करके दिखा दिया। जो ये चलता हुआ संसार है, चलता हुआ माया का रूप है, उसको सत्य से अलग करके बता दिया कि ये माया है और ये सत्य है। ये संतरे की फाड़ियाँ जब हट गईं तो जो रह गया वही सत्य है। और इस सत्य को ही प्राप्त करने के बाद जीवन में सुकून आ सकता है। और सुकून की परम अवस्था ही परमात्मा है, क्योंकि सत्य ही परमात्मा है, परमात्मा ही सत्य है और परमात्मा ही सुकून है। उससे पहले हम जितनी ही कोशिश कर लें, जितने प्रयास कर लें, जितने हाथ पैर मार लें, कुछ देर के लिए शांत हो सकते हैं, पर फिर कोई लहर उठती है, फिर कोई ऐसी बात होती है। तो जिसने इस माया को, इस नश्वर माया को जान लिया, पहचान लिया और उसको अलग करके इस सत्य का बोध कर लिया, उसके जीवन में सद्गुरु के ज्ञान से हर पल में सुकून। सद्गुरु माता जी ने कल कहा कि एकत्व इस परमात्मा के साथ बन जाए तो जीवन में सुकून का अनुभव किया जा सकता है, जीवन में शुक्राने वाले भाव आ जाते हैं। हम कितनी बार उन पंक्तियों को सुनते भी हैं, दोहराते भी हैं कि एकला जाना, एकला माना, एक व एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। पर जो एक होने की अवस्था सद्गुरु ने कल कही कि ये एक अगर हो जाया जाए इस एक के साथ, इसकी रजा के साथ मैं अपनी रजा को एक कर लूं, तो जीवन में सुकून शामिल होना शुरू हो जाता है। इसकी रजा में और मेरी रजा में भेद ना रहे, फर्क ना रहे, संघर्ष मेरे जीवन से इस प्रकार से खत्म हो जाए कि मैं इसकी रजा में बहने को तैयार हूं, तो सुकून जीवन में शामिल हो जाता है। कल जो वो पेड़ की टहनी का उदाहरण लेकर हजूर ने फरमाया कि वो टहनी बोले कि मुझे भी सीधा उगना है, मैं इस प्रकार इस दिशा में क्यों उग रही हूं। तो जब तक तो वो टहनी खुद को टहनी की तरह देख रही है तो अनेक ऐसे सवाल उसके मन में आ सकते हैं कि मैं इस दिशा में क्यों उग रही हूं, मैं नीचे की तरफ क्यों झुक रही हूं, मुझ पर पत्ते और मेरी साथ वाली टहनी पर फूल, मुझ पर पत्ते और मेरी साथ वाली टहनी पर फल। जब तक तो खुद को टहनी समझ रही है तब तक ये सारे सवाल उसके मन में आने लाजमी हैं। पर जब उसको इस बात का बोध करा दिया जाए कि असल में तू टहनी नहीं, तू पेड़ ही है, तेरा अस्तित्व टहनी का नहीं, इस पेड़ का ही है, तो ये बोध उसकी सारी इन शंकाओं को, सारे इस देखने के नज़रिए को बदल देता है कि मैं टहनी की तरह जीवन जी रही थी पर अस्तित्व मेरा विशाल, कितना विशाल, मैं पूरे का पूरा पेड़ ही हूँ, मैं पेड़ से अलग थी ही नहीं। और यही इंसान की हालत है। हम अक्सर वो बूंद और सागर की बात करते हैं कि बूंद सागर में मिल जाए तो सागर हो जाए, पर हम सुनते हैं, कहते हैं, फिर सुनते हैं, फिर कहते हैं, पर अक्सर इस बात से अपने जीवन को संचालित नहीं कर पाते। जीवन की जो मेरी गाड़ी चल रही है उसमें इस बोध को शामिल नहीं कर पाता। आज अष्टवक्र गीता का सहारा लेते हुए बच्ची ने कहा कि द्वैत ही दुख का मूल है। वही बात कि एकत्व जीवन में नहीं आया, मैं खुद को और अपनी खुदी को नहीं छोड़ पा रहा, नहीं समझ पा रहा मेरा अस्तित्व क्या है, तो जीवन में सुकून आना बहुत मुश्किल। क्योंकि समर्पण जीवन में नहीं आएगा तो एकत्व भी नहीं आ सकता, एकत्व जीवन में नहीं आएगा तो जीवन में शिकवा, दरार, संघर्ष, इस परमात्मा के साथ ही संघर्ष में करता चला जाऊंगा। एक और कारण जो इंसान अपने सुकून को अक्सर खुद ही अपने हाथ से गला घोटता है अपने सुकून का, वो है तुलना, कंपैरिजंस। मुझे लगने तो लग जाता है कि मुझे बोध हो गया, मैं इस परमात्मा को जान चुका हूं, मैं भक्त हो गया हूं, पर फिर मेरी नजर किसी और की भक्ति पर, किसी और के चाल चलन पर जाती है और फिर मैं कहने लगता हूं कि ऐसे थोड़ी भक्ति होती है, इसे थोड़ी भक्त कहा जाता है, ये क्या तरीका हुआ। फिर मैं दुनिया को सोचता हूं बताने वाला मैं ही हो गया, तुलना में आ जाता हूं, फिर और बड़े होने की कोशिश, कंपैरिजंस, महत्वाकांक्षाएं। शब्द तो मेरे ये कह रहे हैं कि जीवन में आनंद है, जीवन में सुकून है, जीवन में परमात्मा है, मेरे पास ब्रह्म ज्ञान है, पर ये कैसा सुकून, ये कैसा परमात्मा मेरे जीवन में है कि किसी और को भक्ति करता देख, किसी और के जीवन को देख, अचानक से सारा सुकून सब भूल बैठता हूँ और परेशानी उठने लगती है दिल के अंदर कि इसको तो पता ही नहीं। तो वाकई कोई ज्ञानी हो जाए, ब्रह्म ज्ञानी हो जाए, सुकून को, परमात्मा को प्राप्त कर ले, उसकी अवस्था तो इतनी सहज हो जाए कि वाकई अगर कोई ऐसी बात भी है तो उससे उसका सुकून नहीं खराब हो सकता। ऐसे ही राजा जनक के जीवन के बारे में जब पढ़ते हैं तो एक कहानी आती है कि एक बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी किसी दूसरे राज्य में रहते थे। जब उनको पता चला कि राजा जनक की बात उन तक पहुंची कि कोई भक्त है, कोई इस तत्व का ज्ञानी है, पर वैसे वो राजा है, राजा जनक, बहुत ही उस्तति उनकी की जाती उनके स्वभाव को देख के, उनके समर्पण को देख के अपने गुरु की तरफ। तो जब ये खबर उस विद्वान ज्ञानी व्यक्ति के पास पहुंचती है तो वो सीधा ही ये कहता है कि एक राजा कैसे भक्त हो सकता है, सारा समय, पूरा का पूरा दिन माया में, अपने राज्य में, महल माड़ियों में, सोने चांदी, इतनी बड़ी फौज, ऐसा इंसान भी कोई ज्ञानी कहाँ, भक्त कहाँ, परमात्मा का ऐसे इंसान को क्या पता चल सकता है, ये तो हम जैसे फकीरों को ही पता चल सकता है जो सादा जीवन जी रहे हैं। देखो कितने साधारण मैं कपड़े पहनता हूँ, कितना साधारण मेरा जीवन है। मैं मिलना चाहूंगा, उसको बताना चाहूंगा कि तेरे को गलत फहमी हो गई है राजा जनक, तू भक्त नहीं, तू कोई ज्ञानी नहीं। तो इसी उद्देश्य के साथ, इसी नियत के साथ वो राजा जनक के राज्य में पहुंचते हैं और बड़ी प्रसिद्ध कहानी शायद आप सबने सुनी होगी। तो राजा जनक बड़े ही हलीमी के साथ उनका स्वागत करते हैं और वो उनसे जब मिलने का समय मांगते हैं तो राजा जनक उनको समय भी देते हैं और वो अपने भाव राजा जनक के आगे रखते हैं कि आप कैसे खुद को ज्ञानी कह सकते हैं, खुद को ब्रह्म ज्ञानी आप कैसे कह सकते हैं? इतने बड़े राज्य में रहते हैं, खुद को राजा कहते हैं, इतनी माया, वही सब अपनी बात कि परमात्मा तो फकीरी में है, परमात्मा तो इस तरह का जीवन जीने में है, त्याग में है, त्याग करके जीवन जियो। तो राजा जनक बड़े ही शांत भाव से सब कुछ सुनते हैं और फिर कहते हैं, चलो अब हम कल सुबह मिलते हैं। सुबह महल के साथ ही एक जो नदी बह रही है वहाँ कहते हैं कि आइए हम स्नान के लिए चलते हैं। और जैसे ही दोनों स्नान कर रहे होते हैं तो जो महल का हिस्सा बिल्कुल नदी के किनारे होता है वहाँ आग लग जाती है। पर राजा जनक बड़े ही सहज स्वभाव से स्नान करते रहते हैं और वो जो विद्वान महात्मा, ज्ञानी महात्मा, वो परेशान होकर कहते हैं कि तुम देखते नहीं कि यहाँ आग लग गई है? इतने सहज कैसे बैठे हो इस समय भी? महल जल जाएगा। तो राजा जनक बड़े ही सहज भाव से अपना स्नान उसमें लगे हैं। पर वो जो पंडित, वो जो ज्ञानी, वो जो विद्वान महात्मा, वो दौड़ कर जाता है और वहाँ अपना धोती कुर्ता जो पड़ा है उस ज़मीन पर वो उठाता है कि मेरी धोती और कुर्ता जल जाएगी, तेरे को अपने महल की नहीं पड़ी। तो राजा जनक हंस के बाद में बस इतनी सी बात कहते हैं कि वो आग भी मैंने लगवाई थी, क्योंकि बात इस बात में नहीं कि किसके पास कितना है, जिसके पास जो है और जो नहीं है, उस इंसान का उसके प्रति नज़रिया कैसा है। क्या मिट्टी को मिट्टी समझता है या अभी भी उसको सब कुछ समझता है? जिसको ये बोध हो गया कि ये माया है, नश्वर है, मिट्टी है, फिर मिट्टी के चाहे ढेर लगे हों आसपास या सिर्फ एक पोटली में मिट्टी हो, तो क्या फ़र्क? तो राजा जनक ने कहा कि मेरे गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया है उससे तो मैं यही सीखा हूँ और यही सत्य है कि मिट्टी के चाहे महल हों, मिट्टी के जो मर्जी हो, जितना मर्जी हो, मेरा रस उसमें से ख़त्म हो चुका है, पर आपका अपने धोती कुर्ते में से रस अभी ख़त्म नहीं हुआ था। आपका मेरे महल माड़ी में मुझसे ज़्यादा रस है, क्योंकि अब इतनी दूर से मेरे महल को देखते हुए यहाँ तक पहुँच गए मुझे बताने के लिए। तो ये जो तुलना है कि भक्ति कैसे करी जा सकती है, क्या होता है, भक्ति करने का एकमात्र तरीका देश काल ते समय मुताबिक सदगुरु जी में चलाना है। वक्त का पैगंबर, वक्त का सदगुरु जो कह दे उसको अपने जीवन में लागू कर लेना, वैसे ही अपना जीवन जी लेना भक्ति है, वही समर्पण है। और जिसके जीवन में ये भक्ति, ये समर्पण आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस जीवन में सुकून की सुगंध ना आए, सुकून बस ना जाए। और सदगुरु जब ब्रह्म ज्ञान देते हैं तो ये परमात्मा से जब मिलवाते हैं, दर्शन कराते हैं इस परमात्मा के, इस सत्य के, इस विराट स्वरूप के, तो वो बात भी हम अक्सर सुनते हैं कि शाहरख से भी नज़दीक जो परमात्मा है उसके मैं दर्शन कर लेता हूँ। पर उससे पहले वाली जो अवस्था है, वो जो लिखी गई है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ज्यों घट घट में राम है दुनिया देखे नाही, कि वो जो कस्तूरी की खुशबू जिसके पीछे वो मृग, जिसको ढूंढते हुए, जिसको सूंघते हुए पागल हुआ जा रहा है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, इस खुशबू तक मैं पहुँच सकूँ, उसको पाने की चाहत में जो एक दीवानापन सा उसके अंदर के दौड़े जा रहा है पूरे वन में, पर वैसे वो खुशबू उसकी अपनी नाभि से कस्तूरी कुंडल बसे। तो इंसान भी अनेकों तरीके के सवालों के जवाब ढूंढ रहा है, अनेकों तरीकों की बातों में फंसा हुआ है, खुद को खुद की तरह तरीके की, ये जो चाहे वो बुद्धि की शांति के लिए उसको कुछ चाहिए, चाहे मन की शांति के लिए कुछ चाहिए, चाहे धन, चाहे कुछ भी इसको ढूंढ रहा है कि कोई सुकून से मैं अपना जीवन जी सकूं, तो वो सुकून सद्गुरु जब अपना ब्रह्म ज्ञान देते हैं तो पता चलता है कि कस्तूरी कुंडल बसे, ये तो हर पल मेरी अपनी सच्चाई से मैं वंचित था, अपनी सच्चाई का मुझे बोध नहीं था, अपनी सच्चाई को जान लिया कि मैं हूँ कौन, मैं क्या हूँ, तो सुकून उसी पल मेरे जीवन में शामिल। तो वही बात जो एग्जीबिशन में भी देखने को मिली कि नागपुर को ज़ीरो माइल कहा जाता है, कि ये माइलस्टोन है जिसको ज़ीरो माइल की तरह, कि यहीं से सब सेंटर पॉइंट की तरह, तो अपने जीवन में भी जब ज़ीरो माइल पे पहुंच गए, इधर उधर दौड़ना छोड़ दिया, तो ज़ीरो माइल पे सुकून मिल जाता है। और इस ज़ीरो माइल की पहचान और उस तक पहुंचाने के लिए सद्गुरु की अनुकंपा, सद्गुरु की कृपा और सद्गुरु के चरणों में समर्पण, कि ये ज़ीरो माइल आपने जो दिखाया है तो मैं ज़ीरो बनकर उस ज़ीरो माइल पर रह सकूं। सुनने में युगों युगों से संतों ने यही एक संदेश दोहराया है, पीरों ने, पैगंबरों ने, महाराष्ट्र के संतों का हम जिक्र सुनते हैं, उन्होंने भी यही एक बात, सुकून, समर्पण, भक्ति, एक ही बात युगों युगों से ज्यों की त्यों मानव तक पहुंचाई जाती है। और जब सुनते हैं तो लगता है कि इतनी साधारण, इतनी सिंपल। तो दास अक्सर एक बात कहता है कि ट्रूथ इज ऑलवेज सिंपल, इट इज द सिंपलेस्ट ऑफ थिंग्स इन लाइफ। सत्य बहुत साधारण है और जो साधारण है वही सत्य है और वही परमात्मा है। उसको कॉम्प्लिकेट, उसको मुश्किल इंसान ने खुद बना रखा है, खुद को सत्य से दूर ले जाकर। मैन इज लिविंग सो फार अवे फ्रॉम द ट्रूथ, लिविंग इन कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएटेड बाय हिज ओन माइंड, बाय द सोसाइटी दैट ही लिव्स इन। बट द रियल ट्रूथ इज वेरी सिंपल, एंड ऑल दो इट इज वेरी सिंपल, स्टिल इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड एंड लिव। चाहे सत्य जितना भी सरल और साधारण है, उतना ही मुश्किल इसको अपने जीवन में उतारना, उतना ही मुश्किल इसको जीना। और इसी मुश्किल को हल सतगुरु कर देते हैं, हर मुश्किल का हल सतगुरु है। कल भी सतगुरु सी, अज भी सतगुरु है। एक एक मुश्किल, इतनी साधारण सी बात को मनुष्य ने अपने लिए इतना कॉम्प्लिकेट, इतना मुश्किल कर लिया है, खुद लुच के बैठ गया है अपने बनाए हुए जाल में। मकड़ी जैसा हाल है, उसको लग रहा है कि मैं बहुत सुंदर माया अपने इर्द गिर्द इकट्ठी कर रहा हूँ, जिस प्रकार मकड़ी बड़े सुंदर तरीके के वो जाल बनाती है, उसको नज़दीक से देखो तो लगता है किसी कारीगर का काम है, इतनी इंट्रिकेट, इतनी कुशलता से उस जाल को बनाया जाता है, फिर उसमें ही फंस जाती है। और यही काम जो हमें लगता है कि कमाल करे जा रहा हूँ मैं, इतना सुंदर अपने आसपास संसार खड़ा कर दिया है, कमाल, और इस सुंदर संसार में ही फंस के रह जाता हूँ, और अंत समय जब समझ आता है कि तो झूठ में ही फंस के रह गए, मूर्खता भरा जीवन जीते रह गए, सत्य तो इंतजार कर रहा था कि मैं अपनी आंखें खोलूं उसकी तरफ। कल फरमाया सच्चे पातशाह ने कि जब जागो तभी सवेरा, इस बात को हम सुनते हैं फिल्मों में, बातों में, किताबों में, किसी भी काम के लिए कुछ भी करना हो तो जब इंसान जाग जाए तभी सवेरा। और फिर कहा कि ये परमात्मा का सवेरा तो हर पल चढ़ा हुआ है, किसी चीज़ की देरी है या इंतज़ार है तो अपनी आँख खोलने की। तो ये परमात्मा का सूर्य उदय जो कभी अस्त नहीं होता, हमेशा चढ़ा हुआ है, बस रास्ते से धुंध को हमें हटाना है और वह धुंध अपना ये जो माया रूपी चश्मा है उसको उतार के, ये जो आँख मैंने बंद की हुई है इस सत्य के सूर्य की तरफ, उसको बंद करके, उसको खोल के इसको प्राप्त किया जा सकता है। तो अंत में दास यही अरदास करेगा कि जो सदगुरु का ब्रह्म ज्ञान बहुत ही सहज में हम सबके जीवन में, हम सबकी झोली में आया है, ये हम सबके जीवन में भी उतने सहज में आ सके। और ये जो सुंदर रूप, भव्य नज़ारा महाराष्ट्र के समागम का नागपुर में बना है, तो सभी संतों को, सभी महात्माओं को इसकी बहुत बहुत मुबारक। सेवा दल के भाई बहन जिन्होंने दिन रात एक करके सेवाएं की, और महापुरुष जिन्होंने अपनी अपनी जैसी जैसी सेवा सद्गुरु ने उनको बख्शी हुई है बखूबी सबने निभाई, तो आज ये नज़ारा बना है और ये समागम तो इनकी कृपा से होते ही रहेंगे और विशाल होते रहेंगे। पर हमारे जीवन में भी हमारी रूह का इस परमात्मा से संगम हो जाए, समागम हो जाए। सात संग जी प्रेमा ने बोला अनका जी।